नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में उनके निर्देश पर सैन्य अभियान चलाया गया। फ्लोरिडा में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए कराकस में स्थित एक किलेबंद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। ट्रंप ने बताया कि जब तक वेनेजुएला की सत्ता सुरक्षित, उचित और न्यायसंगत हाथों में नहीं आती, तब तक अमेरिका वहां का शासन संभालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई की तुलना ईरान के खिलाफ हुई अमरीकी सैन्य कार्रवाईयों से की, जिनमें परमाणु ठिकानों पर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमरीकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन पर न्यूयॉर्क में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अमरीका में प्रवेश करने वाले अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को एक तानाशाह बताते हुए वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अब स्वतंत्र है और इस अभियान के बाद अमरीका सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र बन गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमरीकी हमले पर चर्चा के लिए कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थायी सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के स्थायी मिशन ने सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर आपातकालीन सत्र का अनुरोध किया है और अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतेरेश ने वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को एक खतरनाक मिसाल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा कि महासचिव इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका की वेनेजुएला पर इस सैन्य कार्रवाई पर विश्व नेताओं ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा सहित कई देशों ने इसकी निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। भारत में विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया है और अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल कल 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आंध्र प्रदेश पहुंचे। कृष्णा जिले के गन्नावरम हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश ने मॉरिशस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति गोखुल गुंटूर में आज 3रे विश्व तेलुगु सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुष और महिलाओं की लगभग 73 टीमें इसमें भाग लेंगी। पूर्वांचल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस स्टर्न डीएलएस नियम के अंतर्गत 25 रन से हरा दिया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर कर दिया है। यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों के बाद लिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अगले 1-2 दिन बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर में भी आज घने कोहरे की संभावना है। इधर दिल्ली में कल घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 72 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।